آج کل
दोस्तों सीरिया संकट कार्यक्रम के कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले दो कार्यक्रमों में हमने आपको सीरिया के एक नागरिक अबू बशीर की दर्दनाक कहानी सुनाई थी। वे सीरिया सरकार के विरोधियों में थे। सन 2011 में सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल थे। उन्होंने सरकार के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का समर्थन किया था। अपने परिवार के साथ दाइश के नियंत्रण वाले हलब शहर में वे चले गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वह अपने परिवार को किस नरक में लेकर आ गए हैं। ये हकीकत तो उन पर बाद में खुली जब उन्होंने हलब पर कब्जा किए दाइश का क्रूर चेहरा देखा था। वे बताते हैं कि उनका पुत्र दाइश में शामिल हो गया था और वो सीरियाई सेना के साथ जंग के दौरान मारा गया। अभी वो अपने बेटे की मौत के दुख से उभरे भी नहीं थे कि दाइश के एक सरगना ने उनकी छोटी बेटी लैला को अपनी पत्नी के रूप में चुना और उसे वो उठा कर ले गया। ये देखकर अबू बशीर के हाथों से तोते उड़ गए और उन्होंने दाइश के क्रूर सरगना से अपनी बेटी को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। उन्होंने अपनी बेटी को दाइश के सरगना के चुंगल से छुड़ाने के लिए इसी गुट के दूसरे तत्व को कुछ पैसे दिए ताकि वो उनकी बेटी की खबर उन्हें देता रहे।
इसके बाद हालात ने करवट ली और सीरिया की सेना और उसके घटकों ने हलब में दाइश के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। हलब की आज़ादी के लिए भीषण जंग शुरू हो गई। जंग के दौरान हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अबू बशीर कहते हैं कि जंग की वजह से हलब के हालात दिन प्रतिदिन खराब से खराब होते जा रहे थे। हम तक ये खबर पहुंच रही थी कि सीरिया की सेना हलब को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और इस चीज़ ने दाइश के आतंकियों को काफी परेशान कर दिया था। अबू बशीर कहते हैं कि मुझे दाइश के आतंकियों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता था कि ऐसा दिन आए जब दाइश और उसके सारे आतंकी खत्म हो जाएं। हलब में मौजूद दाइश के ठिकानों पर सीरियाई सेना के मार्टर गोले गिर रहे थे और दाइश के आतंकियों में अफरा तफरी मची हुई थी। अबू बशीर परेशानी की हालत में इधर उधर टहल रहे थे और दाइश का वो युवा आतंकी जिसको उन्होंने अपनी बेटी की खबर लाने को कहा था वो भी कुछ समाचार न ला सका। उनका पूरा परिवार परेशान था। राष्ट्रसंघ के शरणार्थी शिविर में रहने वाली एक पीड़ित सीरियाई लड़की ने बताया कि दाइश के आतंकी इस्लाम के नाम पर शैतानों जैसे काम कर रहे हैं।
لما للأسف دخلت لبيتي عرفتي يعني قدرت تدخل دخلت عن طريق زوجي
अबू बशीर कहते हैं कि मेरी पत्नी उम्मे आयशा अपनी बेटी के लिए परेशान थीं। वे पूरा दिन रोया करती थीं। उनका रोना पीटना मेरे दिल पर खंजर का काम करता था। जब हम दाइश के उस युवा आतंकी की ओर से निराश हो गए तो हमने अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक दिन दाइश के उसी कमांडर अबू नस्र के घर का पता पूछा जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया था। हम उसके घर पहुँचे। दाइश के उस सरगना के घर पर सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध थे। कई जगह हमारी तलाशी ली गई। मैंने सुरक्षा पर तैनात लोगों को अपना परिचय कराया और बताया कि मैं अबू बशीर हूं और तुम्हारे कमांडर अबू नस्र की फैमिली से हूं। सुरक्षा पर तैनात आतंकी हम पर हंसने लगे और उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। उन्होंने हमसे कहा कि अबू नस्र ने कहां से सीरियन फैमिली तलाश कर ली। चलो निकलो यहां से, जल्दी से भाग जाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। मरता क्या ना करता, मैं उल्टे पांव वापस हो लिया। मैं सोच रहा था कि हम कैसे जानवरों के बीच में फंस गए हैं। अबू बशीर अभी अपने घर पहुंचे नहीं थे कि उन्हें एक और बुरी खबर सुनने को मिली। दाइश का वो सदस्य जो लैला के बारे में खबर लाने के लिए रिश्वत ले चुका था, वो सीरियाई सेना के साथ जंग में मारा गया। अब अबू बशीर पूरी तरह से अपनी बेटी की ओर से निराश हो चुके थे। उनको विश्वास हो गया था कि अब उनको कुछ खबर नहीं मिलेगी। दाइश की कैद से छूटी आयशा नाम की एक लड़की का कहना है कि दाइश के कब्जे में सैकड़ों की संख्या में लड़कियां हैं जिनको हर दिन शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और वे गर्भवती हो जाती हैं।
هي وأمها ماشيين تروحون على المشفى على أساس تشوف إنه يعني ولادتها لم ولادتها مكشفة عن عيونها خذوها وولدت بالحسبة يعني هم عذبونها ولدت.
अबू बशीर अपनी दर्दनाक गाथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं चमत्कार का इंतज़ार कर रहा था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मुझे हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। हलब शहर में जंग के शोले भड़क रहे थे। दूसरे दिन मैं दाइश के उस क्षेत्रीय कमांडर के घर फिर गया। मैंने देखा कि मार्टर गोले की वजह से दाइश के कमांडर के घर का एक हिस्सा तबाह हो चुका था और दाइश की चेक पोस्ट भी उखड़ चुकी थी। इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका था। वहाँ कोई आवाजाही नहीं थी। मेरी चिंता बढ़ गई कि हुआ क्या। लगता है कि कल रात युद्ध विमान से क्षेत्र पर बमबारी की गई थी। मैं अबू नस्र के पते पर पहुँचा। इमारत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था।
अबू बशीर कहते हैं कि मेरा कलेजा मुँह को आ गया था। मैं सोच कर घबरा रहा था कि कहीं मेरी बेटी मर ना गई हो, कहीं ऐसा नहीं है कि हमले की वजह से मलबे में दब गई हो। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा मन अंदर से रोने को कह रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरा दिल भर आया और मैंने आसमान की ओर रुख करके कहा, हे मेरे अल्लाह, ये सब मैं किस तरह बर्दाश्त करूँ। मेरा बेटा बशीर भी अब नहीं रहा और दाइश की वजह से वो मारा गया, और अब मेरी बेटी दाइश के चंगुल में है और उसकी कोई खबर नहीं है। वे दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत सख्त दिन था।
दो 2016 के अंत में अबू बशीर की बेटी के दाइश द्वारा अपहरण को 4 महीने का समय हो गया था। हलब मोर्चे से अच्छी खबर आने लगी, जिससे अबू बशीर में उम्मीद की किरण पैदा हुई। सीरिया की सेना और प्रतिरोध का मोर्चे हलब पर कब्जा करने और इस महत्वपूर्ण शहर से दाइश व नुसरा फ्रंट के आतंकियों को खदेड़ने के निकट थे। वो सीरिया के इस महत्वपूर्ण शहर की दयनीय स्थिति के बारे में कहते हैं कि हलब सीरिया की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण ध्रुव था। ये शहर सीरिया में व्यापारियों का गढ़ था और अब आतंकियों का अड्डा समझा जाता था। इस शहर के महत्वपूर्ण कारखानों को 2013 से 2014 के बीच तुर्क समर्थित आतंकियों ने खराब कर दिया और इसके उपकरण और औजार तुर्की भेज दिए थे। यही कारण है कि जब हलब आतंकियों के चंगुल से आज़ाद हुआ तो सीरिया और विशेषकर हलब वासियों ने सड़कों पर निकलकर सबसे ज़्यादा जश्न मनाया।
ابو بشیر کہتے ہیں کہ مانو سیریا پر چاروں اور سے بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہوں، ایک طرف سے ترکی، دوسری اور سے سعودی عرب، سنیکت عرب امارات اور تیسری اور سے اسرائیل تتھا امریکہ، سارے کے سارے سیریا کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ سیریا کی اتیت کی یادیں میرے من میں ابھرنے لگیں۔ آج سیریا کے سامنے جو سمسیا ہے وہ اس دیش کی جنتا کی نادانی اور دشمنوں کے دھوکے کی وجہ سے ہے۔ تکفیری آتنکوادیوں نے بھی حلب کی سوتنترتا کے سمے استھانیہ لوگوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارت کے پورو راجنیک ویرین گپتا کا بھی کہنا ہے کہ سیریا کے بارے میں کئی طرح کے بھرم پھیلا کر یوروپی ایوم عرب دیشوں نے امریکہ کے نیتتو میں اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا،
سیریا کے کانٹیکسٹ میں کئی بار رپورٹس آتی ہیں کہ کیمیکل ویپنز اٹیک ہوا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی نے کہا ہے، کوئی نے ایک دکھا دیا، تو بڑے لمیٹڈ سے ایویڈنس کے اوپر ایک کنکلوسیو پروف کر دیا جاتا ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ریشنلائزیشن ہے۔ لیکن ویسٹرن کنٹریز اپنے حملوں کو اور یہ کہنا کہ اسد کو ہٹانا، پر اسد نے کیمیکل ویپنز ڈالے تو اسد کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ایک الٹیمیٹلی آج کل لوگ باغ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم کس بات پہ کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے ویسٹرن کنٹریز امریکہ، تو کم سے کم ہم سیریا کو توڑ دیں گے۔ اور اس کی بات ابھی نہیں ہے، یہ دسیوں سال سے بات چل رہی ہے کہ ایونچولی سیریا میں اتنے کانٹرڈکشنز ہیں، الاوائٹس ہیں، شیاز ہیں، کرڈز ہیں، گورنمنٹ کا کنٹرول لمیٹڈ ہے، تو کیا سیریا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا یا پھر صرف ایک ایسٹرن پارٹ جو ہے وہ کرڈز کا ایک الگ بن جائے گا؟ میرا خیال ہے امریکہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے۔
ابو بشیر اس سمے کی حلب کی استھتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ داعش اور انیہ تکفیری گٹوں نے سوئم سیویوں، مہیلاؤں اور بچوں کو مانویہ ڈھال بنا لیا تھا۔ ڈرے اور بھیبت بچے و مہیلائیں داعش پر ہونے والے مارٹر گولوں کے حملوں کی ڈھال بنتے تھے اور ہر دن مہیلا اور بچے مارے جاتے تھے۔ داعش ہمارے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرتا تھا، وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، ان کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے محلوں اور علاقوں سے داعش کی سرکار گر رہی تھی۔ ہر کشن خوشخبری مل رہی تھی کہ ہم داعش کے چنگل سے آزاد ہونے والے ہیں۔ داعش اور نصرہ فرنٹ کے آتنکی بھاگ رہے تھے۔ جب وہ حلب سے فرار ہو رہے تھے تو انہوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، پورا شہر کھنڈر میں بدل گیا۔ یا خدا، یہ حلب ہے؟ مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا کے سندر شہروں میں سے ایک شہر کا یہ حال ہو گیا تھا۔